योगी प्रत्यक्ष में अन्य ज्ञानम दिव्यमपि अस्ति इति चेत, फिर अगर पूछोगे योगियों का जो प्रत्यक्ष एक अन्य ज्ञान मतलब एक अलग ही प्रकार का ज्ञान होता है, ऐसा कोई दिव्य ज्ञान होता है योगियों के पास? वो भी तो होता है ना। आचार्य कहते हैं कि नत्तस्य प्रत्यक्षत्व, उसको प्रत्यक्ष नहीं मान सकते आप। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि अब वो आंख बंद करके एकदम अपने मन में कुछ भी जान लेते कहाँ क्या हो रहा है, ऐसा तुम मानते हो। और उसको प्रत्यक्ष क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि तुम ही बोलते हो कि इंद्रियों से जो आंखों से जो देखा हुआ है वो प्रत्यक्ष, तो फिर आंख बंद करके देखा हुआ है उसको प्रत्यक्ष कैसे कह सकते हो? इंद्रिय निमित्ता भावात, क्योंकि वो योगी प्रत्यक्ष जो है एक दिव्य ज्ञान, वो इंद्रियों के निमित्त के अभाव में जानता है। अक्षम अक्षम प्रति यद वर्तते तत् प्रत्यक्षम इति अभ्योगमात। और फिर तुमने ये भी स्वीकार किया है कि जो प्रत्येक इंद्रियों में वर्तता है वो अक्ष यानी इंद्रिय लिया तुमने, और हमने अक्ष का अर्थ आत्मा लिया। तो इंद्रियों के सहारे जो जानता है वो प्रत्यक्ष है, ऐसा तुमने स्वीकार किया। किंच सर्वज्ञत्वा भाव प्रतिज्ञा निर्वाह। और अगर योगी प्रत्यक्ष मानोगे तो फिर सर्वज्ञपने का भी अभाव होगा, और तुम्हारी प्रतिज्ञा माने जो तुम पहले बोल आए हो कि इंद्रियों से जो जाना जाता है वो प्रत्यक्ष होता है, इसका इसकी भी हानि होगी। अस्य योगिनो ये ज्ञानम तत् प्रत्यर्थवशवर्ती वा स्यात् अनेकार्थ ग्राही वा। अब हम ये पूछते हैं कि इन योगी के पास जिनके पास तुम बोलते हो कि दिव्य योगी प्रत्यक्ष नाम का ज्ञान है, उनका जो ज्ञान है वो क्या एक एक पदार्थ के वशवर्ती होता है अथवा अनेक पदार्थों को ग्रहण करने वाला होता है? ये हमारा प्रश्न है। यदि प्रत्यर्थ वशवर्ती, यदि एक पदार्थ को जानने वाला होता है माने एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को, तो सर्वज्ञत्व अस्य नास्ति योगिनः। है तो फिर बोले कि इन योगी के पास सर्वज्ञपना हो नहीं सकता। एक के बाद दूसरे को जाने, तो दूसरे जिसको नहीं जाना था अभी तक, तो उतना तो अज्ञान रहा, तो उतना अज्ञान होगा तो फिर सर्वज्ञ कहाँ रहा? सर्वज्ञत्व अस्य नास्ति योगिनः। ज्ञेयस्य अनन्त्यात्, क्योंकि ज्ञेय पदार्थ जो जानने योग्य पदार्थ है वो अनंत है, और अनंत होने के कारण एक एक करके अगर जानोगे तो कभी गिनती पूरी नहीं होने वाली, वो अनंत है पदार्थ, तो कब जानेंगे सबको? और अनेकार्थ अथ अनेकार्थक ग्राही। अब अगर ये कहो कि नहीं अनेक पदार्थों को वो ग्रहण कर लेता है ज्ञान, तो या प्रतिज्ञा जो तुम्हारे यहाँ जो वाक्य आते हैं शास्त्रों में, जो प्रतिज्ञा है तुम्हारी, विजानाति न विज्ञानमेक अर्थद्वयम् यथा, एकम अर्थम विजानाति न विज्ञानद्वयम् तथा इति साहियते। ऐसी जो तुम्हारे यहाँ श्रुति है, तुम्हारे परंपरा है, वो हानि को प्राप्त हो जाती है। जैसे विज्ञान माने अपना ज्ञान, एकम अर्थम विजानाति एक पदार्थ को जानता है, वैसे दो पदार्थ को नहीं जानता। और एकम अर्थम विजानाति न विज्ञान द्वयम तथा, और दो ज्ञान मिलकर के भी एक पदार्थ को नहीं जानते उस प्रकार। इसका हिंदी देख लेना श्लोक का, ये अन्य मत का श्लोक है। और आगे माने जिस प्रकार एक ज्ञान दो पदार्थों को नहीं जानता, उसी प्रकार दो ज्ञान भी एक पदार्थ को नहीं जानते। ऐसे जो तुम्हारे यहाँ प्रतिज्ञा है, जो श्लोक है तुम्हारा, वो खंडित हो जाएगा अगर तुम ये कहो कि योगी का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है दिव्य ज्ञान वो अनेक पदार्थों को जानता है। तो एक ज्ञान दो पदार्थों को नहीं जान सकता तो अनेक को कैसे जान सकता है? तो तुम्हारी बात खंडित होगी। अथवा क्षणिका सर्व संस्कार इति प्रतिज्ञा ही थी, अथवा सर्व संस्कार क्षणिक होते हैं, ऐसी जो प्रतिज्ञा है वो भी हानि को प्राप्त हो जाती है। अनेक क्षणवर्त्येक विज्ञान आभ्युपगमात, क्योंकि तुमने अनेक क्षणवर्ती एक ज्ञान को स्वीकार कर लिया, जबकि तुम्हारे मत में क्या माना है कि एक ज्ञान एक क्षण का होता है, अगले क्षण कुछ दूसरा हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। अनेकार्थक ग्रहण है क्रमेण, और अनेक पदार्थों का जो ग्रहण होता है वो क्रम से ही हो सकता है। युगपदेवेति चेत, अगर ये कहोगे नहीं एक साथ भी होता है, तो योस्य जन्म क्षण स आत्मलाभार्थ एव, ज्ञान की जो उत्पत्ति का क्षण है वो तो उत्पत्ति का क्षण हुआ, जानने का क्षण कहाँ हुआ। और लब्धात्म लाभम ही किंचित स्वकार्यम प्रति व्याप्रियते, उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होने के बाद ही तो वो फिर अपना काम करेगा। प्रदीपवदिति, जैसे दीपक है वो जलाया तो जब वो प्रज्वलित होगा उसके बाद ही तो प्रकाश फैलेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि प्रदीपवदिति चेत, बोले कि नहीं, दीपक के समान जैसे जलाया वैसे ही प्रकाश फैल गया, वैसे ज्ञान उत्पन्न हुआ, वैसे ही जान लिया उसने पदार्थ को एक ही क्षण में। तो फिर बोले कि तस्याप्यनेक क्षण विषयतायाम सत्यामेव प्रकाश्य प्रकाशनाभ्युपगमात। तो भी बोलते हैं कि वह प्रदीप भी अनेक क्षण विषयक होता है, एक क्षण वाला नहीं होता दीपक, तो उसमें अनेक क्षणवर्ती पना होने पर ही प्रकाश और प्रकाश्यों, जो प्रकाशित होने योग्य पदार्थ है, उनका प्रकाश स्वीकार, प्रकाशित करना स्वीकार किया जाता है। विकल्पातीतत्वात् तस्य शून्यता प्रसंगश्च, और भेद रहित होने के कारण उस ज्ञान में, उस प्रमाण में शून्यता का प्रसंग भी आ जाता है। अभिहितो भय प्रकारस्य प्रमाणस्य आदि प्रकार विशेष प्रतिपत्त्यर्थमाह, कहे गए अनेक प्रकार के या दो प्रकार के जो प्रमाण हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष, अभिहित उभय प्रकारस्य, कहे गए दो प्रकार के प्रमाण के आदि प्रकार, प्रथम प्रकार जो परोक्ष प्रमाण है, उसके विशेष प्रतिपत्त्यर्थमाह, भेद का प्रतिपादन करने के लिए, कथन करने के लिए आचार्य उमा स्वामी पहले परोक्ष प्रमाण का वर्णन करने के लिए उसका भेद बतलाते हैं। परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं? दो, मति और श्रुति। तो सबसे पहले मति बतलाते हैं। मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध इति, ये अनर्थांतरम, कोई अर्थांतर नहीं है। अर्थांतर यानी अलग अलग वस्तुएं नहीं है। मति कह लो, स्मृति कह लो, संज्ञा कह लो, चिंता कह लो और अभिनिबोध कह लो, एक ही चीज है। आदावुद्दिष्टम यज्ञानम तस्य पर्याय शब्द एते वेदितव्य। पहले जो कहा गया ज्ञान है कौन से सूत्र में? ज्ञान का सूत्र कौन सा? नौवा, मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम। उसमें जो सबसे पहले कहा गया ज्ञान है, एते तस्य पर्याय शब्द वेदितव्य, ये यहाँ जितने शब्द दिए हैं वो उसके ही पर्यायवादी शब्द, पर्यायवाची शब्द हैं, ऐसा जानना। मति ज्ञानावरण क्षयोपशमांतरंग निमित्त जनितोपयोग विषयत्वात्, क्योंकि मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम रूप जो अंतरंग निमित्त से उत्पन्न उपयोग विशेष है, उसका विषय होने के कारण। एतेषां श्रुतादिश व प्रवृत्तेश्च, और ये जो यहाँ जितने नाम दिए हुए हैं ये श्रुत आदि में प्रवृत्त नहीं होते। मननम मति ही, स्मरणम स्मृति ही, संज्ञानम संज्ञा, चिंतनम चिंता, अभिनिबोधनम अभिनिबोध। व्याकरण से बतला दिया, मति किसको कहते हैं? मनन को मति कहते हैं। स्मृति किसको कहते हैं? स्मरण को। संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञान को। चिंता किसको कहते हैं? चिंतन को। और अभिनिबोध किसको कहते हैं? अभिनिबोधन को। इति, इस प्रकार यथासंभव विग्रहांतरम विघ्नेय, यथासंभव विग्रहांतर यानी व्युत्पत्ति है उसकी, वो जान लेना। सत्यपि प्रकृति भेदे रूढ़ी बल लाभात पर्याय शब्दत्व, यद्यपि मति स्मृति संज्ञा आदि में प्रकृति भेद है, लेकिन फिर भी रूढ़ी के बल का लाभ होने से, अर्थात रूढ़ी में प्रचलित होने से पर्याय शब्दत्व, इनको सबको एक पर्याय के शब्द माना है। यथा इंद्र शक्र पुरंदर, जैसे इंद्र को ही शक्र भी बोलते हैं, पुरंदर भी बोलते हैं। इंधनादि क्रिया भेदे भी, जबकि इंद्र शब्द बना है इंधन क्रिया से, शक्र शब्द बना है शक्नोति इति शक्र, क्या संभव है उस अपेक्षा से शक्र, पुरंदर यानी पुरंदारयति इति, पुरंदर ऐसे शब्द बने हुए, लेकिन फिर भी ये सारे शब्द जो होते हैं शशिपतेरेकस्यैव संज्ञा, इंद्र के ही नाम है, इस प्रकार स्वीकार कर लिए जाते हैं। इसी प्रकार मति स्मृति संज्ञा चिंता निपुण, इसमें भले अर्थ अलग अलग हो पर फिर भी यहाँ इन सबको मति ज्ञान की पर्याय शब्द माना है। समभिरूढ़ नया अपेक्षया, समभिरूढ़ नय की अपेक्षा से, तेषाम अर्थांतर कल्पनायाम, उनके अर्थों में भेद की कल्पना करने पर, मत्यादिष्वपि सक्रमो विद्यते, मति आदिक में भी वही क्रम विद्यमान रहता है। किंतु मति ज्ञानावरण क्षयोपिशम निमित्तोपयोगम नातिवर्तते, लेकिन मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम रूप निमित्त से होने वाला जो उपयोग होता है उसका उल्लंघन नहीं करते ये, चाहे आप इसके अर्थभेद करके भी निकालो तो मति जो होगी वो भी मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होगी, स्मृति होगी वो भी मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होगी, संज्ञा चिंता और अभिनिबोध ये सब मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ही जनित होंगे। इति अयम अत्र अर्थ विवक्षित है, इस प्रकार ये अर्थ यहाँ पर विवक्षित है। इति शब्द प्रकारांतर प्रकारार्थ है, इति शब्द प्रकारार्थ है, इसमें इति शब्द आता है ना सूत्र में, वो प्रकारार्थ है, प्रकार करने के लिए, एवं प्रकार इस प्रकार, अस्य पर्याय शब्द इति, इसके पर्याय शब्द हो गए। अविधेय अर्थ हुआ अथवा जो वाच्य है अभिधेय, अभिधान नाम को कहते हैं और अभिधेय उस नाम से जिसकी तरफ संकेत किया गया उसको कहते हैं, उसके लिए भी होता है मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्येतैर योर्थो विधीयते स एक एव इति, मति से स्मृति से संज्ञा से चिंता और अभिनिबोध इन सब से जो पदार्थ जाना जाता है वो एक ही रहता है, इसलिए ये सब एक है, अन्य रूप नहीं है।